Welcome to the Aarna Law Podcast. I'm your host, Kamala Naganand, Managing Partner at Aarna Law. We bring to you another episode of our series celebrating trailblazing women in various sectors. In each episode, our guests tell us about their professional journeys and also about the challenges they faced with intellectual property and how they overcame them. Today, we're stepping into the realm of art and innovation with Aarti Gupta, a visionary in the field of contemporary sculpture. Aarti's work is a testament to her passion for exploring the boundaries of terracotta, making her a standout artist in her domain. From her early days in Gwalior to becoming a sculptor, Aarti's journey is one of creativity, resilience, and dedication to her craft. Join us as we uncover the stories behind her sculptures, her approach to combining traditional techniques with modern themes, and her efforts to inspire women artists everywhere. Hello, Aarti, and welcome to our podcast this afternoon. Thank you so much for agreeing to be interviewed. This podcast, ladies and gentlemen, is going to be in Hindi. And we really appreciate Aarti, who has a very senior sculptor and an artist who has joined us this afternoon.
Thank you so much, ma'am, for inviting me. Thank you.
Absolute pleasure. So Aarti, can we start at the beginning? जब आप आपने सोचा कि हमें sculpture करना है या मुझे fine arts education चाहिए? Where did you start and how did you begin your career?
Actually, ma'am, मैं शुरू से ही कुछ different करना चाहती थी. मतलब हमेशा से ऐसा था कि ये सब करना है, ये नहीं, कुछ अलग करना है. तो मैं जब कॉलेज में गई थी, फाइन आर्ट्स कॉलेज में, तो पेंटिंग मैंने बहुत बार सुना हुआ था कि यार पेंटिंग तो सब करते हैं, पर स्कल्पचर मेरे लिए न्यू था. तो बस एक अंदर से होता है ना, शायद कहते हैं कि भगवान जो करवाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस फ्लो में बहने लगते हैं. तो मैंने बिना कुछ सोचे ही उसको भर दिया था कि नहीं, मैं स्कल्पचर ही करूँगी. बिकॉज आज के उसमें जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा स्कल्पचर्स कम ही लेती हैं, बिकॉज इट्स बहुत हार्ड वर्क होता है. तो लोग बोलते हैं कि अरे आप वीमेन है तो आप पेंटिंग लीजिए, आप इजीली कर पाएंगे, बिकॉज में स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग, एवरीथिंग हमको करना पड़ता है. तो पर मेरे अंदर से था नहीं नहीं मुझे इसी में आ रहा है तो मुझे यही करना है. तो इस तरीके से हम लोग उस साइड में पहुंच गए और उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैं शुरू से ही मतलब कॉलेज में भी लोगों से उतना बोलती नहीं थी, अपना काम में ही अंदर से बस करती ही रहती थी. तो उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल सिंपोजियम मिले जो स्टोन कार्विंग्स के थे ग्वालियर में, जहाँ मैं मेरा बर्थ है. तो उसके बाद वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फिर एग्जीबिशंस किए दिल्ली में, इंदौर में, और फिर मेरी शादी हुई तो मैं बैंगलोर आई. बैंगलोर एकदम नया था और सब चीज़ें यहाँ इतना कुछ पता नहीं था, जैसे कि सब विमेंस को फेस करना पड़ता है कि हम कोई भी नया घर जब हम चूज करते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है हमारे लिए. तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, पर मैंने अपना काम कंटिन्यूसली करती रही घर में, पर बाहर निकलने के लिए कैसे करना है क्या है उसके लिए मैंने गैप लिया. और उस बीच में मेरा मेरी बेबी है, तो अब वो 10 ईयर्स की हो गई है, तो 5 ईयर्स मैंने फुल उसको टाइम दिया था. और पूरा काम मैं अपना, क्योंकि इस काम के बिना आई थिंक मैं जी ही नहीं सकती हूँ. तो ये काम एक सिर्फ ये नहीं कि मेरा वर्क है, मेरा पैशन है, मतलब मुझे वो करना ही है, चाहे किसी भी आप कंडीशन में हो, आप छोटा बनाए, आपके पास पेडिस्टल है या नहीं है, आपके पास टूल्स हैं कि नहीं है, उन सब में भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास मतलब उसको पकाने के लिए भट्टी है कि नहीं है, पर बस मैं अपना काम करती ही रहती थी. तो आई थिंक यही मेन चीज़ है कि हमें अपना कंटिन्यूटी से वो काम करते रहना चाहिए और लाइन्स अपने आप खुलने लग जाती हैं.
आपकी पढ़ाई आपने कहा की, और व्हाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर कॉलेज?
मैं पहले दिल्ली में थी जब मैंने 11th 12th किया था, तो मेरे पास टेक्सटाइल साइंस ही थी. मैंने जैसे कहा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था, और उसके बाद मेरे पापा शिफ्ट हुए ग्वालियर में, तो वहाँ मैं टेक्सटाइल साइंस के लिए गई. तो मुझे पता चला कि जितना मैं वहाँ कर चुकी हूँ 11th 12th में, यहाँ वो कॉलेज में अवेलेबल भी नहीं था. तो मुझे, क्योंकि कभी भी डिग्री लेने में बिलीव नहीं था, कभी भी नहीं था, मुझे लगता था कि हमें जो काम आता है वही हमारे लिए बेस्ट है, ना कि सिर्फ डिग्रीज लेके हमें उसको करना है. तो फिर मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में गई और MP के आपके फाइन आर्ट्स कॉलेज में ही मैंने अपना BFA किया, और उसके बाद बस स्टार्ट हो गया स्कल्पचर.
तो आपके स्कल्पचर के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे, आपका क्या स्टाइल है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट?
मैम एक्चुअली क्या है कि मैंने सारे मीडियम्स किए हैं कॉलेज में, उसके बाद मुझे ना किसी भी बाउंडेशन में रहना शुरू से ही पसंद नहीं था. कि मुझे लगता है जब हम काम भी कर रहे हैं जैसे स्कल्पचर्स में भी. तो हम जैसे किसी और मीडियम को लेते हैं अगर हम मेटल या किसी भी चीज में, तो हमें उसमें ना रुकना होता था कि अरे हमें इसका कास्टिंग करनी है तो हम इसका फ्लो यहाँ से काटना पड़ेगा हमको उस चीज के लिए. तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता था उस चीज में. तो बस फिर मैं ये टेराकोटा में जब लोगों को सिखाया गया कि आप लेयर्स बनाइए और करिए उस चीज का, तो मैं वो काम करने में मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था क्योंकि सभी लोग वही कर रहे थे. तो मैंने सोचा मैं कुछ नया करती हूँ और मैंने फिर टेराकोटा को कार्विंग करना शुरू किया. शुरुआत में तो आई थिंक मुझे भी नहीं पता था कि मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ या फिर कुछ डिफरेंट बना रही हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते उतना. लेकिन उसके बाद में फिर मेरी भारत भवन में एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे कई सारे सीनियर आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया कि बेटा तुम कुछ डिफरेंट कर रही हो और इसको कंटिन्यू करो. और जैसे सब लोग बोलते हैं कि अरे शादी ना मत करो कि तुम्हारा काम थूक जाएगा, तो लेकिन मैंने, मेरे लिए फैमिली भी उतना ही मैटर करती है, तो मैंने इस काम को कंटिन्यू रखा और आज मैं अपनी फैमिली और मैं अपना काम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ.
Lovely. Why did you choose terracotta as a medium? आपने terracotta क्यों choose किया?
Actually, ma'am, आप जानते हैं कि हम सब में एक five elements होते हैं, उनमें से एक है आपका ये earth, है ना? तो जब हम clay में काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम अपने किसी हिस्से को उस चीज में निकाल रहे हैं. मतलब आप उससे एक ना कनेक्शन फील करते हैं. मैं मेरे स्कल्पचर जब आप देखेंगे या फिर उन्हें टच करेंगे ना, तो आपको वो पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर मिलेगी, जो आई थिंक मैं उसको काम करते समय अपने अंदर फेस करती हूँ. कि जब मैं उस काम को करती हूँ तो मैं बिल्कुल मतलब खो जाती हूँ. मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उस चीज में हम क्या बनाने वाले हैं और क्या बनने वाले हैं. मतलब एक तरीके से ना उसके अंदर ही हो जाती हूँ मैं बिल्कुल क्ले के. तो वो मीडियम जो है मुझे पूरी तरीके से वो फ्रीनेस देता है जो एक मैं चाहती थी ना काम करने के लिए. और उसको टच करने में मुझे एक आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती कभी भी. एक ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ जुड़ा हुआ है. और एक तो ये एशियन मीडियम है जिसको इतना शायद अभी तक प्रमोट नहीं किया गया, सब वो ट्रेडिशनल वे में ही उसको जानते हैं. तो मेरा मोटिव, मुझे लोगों ने बोला भी कि अरे नहीं टेराकोटा मत करो, मेटल करो, ये करो, वो करो, पर मुझे लगा कि नहीं, जिस चीज की वजह से लोग मुझे जानते हैं मैं उसी को प्रमोट क्यों ना करूं. और फिर मैं उसी लेवल पे काम करते करते उसको इंटरनेशनली लेके गई हूँ, जहाँ आज मुझे बहुत अच्छा उसके लिए अप्रिशिएशन मिल रहा है. तो मेरा मोटिव यही था कि जो उसको एशियंट, उसका जो अपना इतना रहा है, जाना जाता है जो अपना टेराकोटा, उसको एक मॉडर्न स्टाइल में दुनिया के सामने उसको रखूं मैं.
लवली. सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? टेराकोटा इज वन थिंग बिकॉज व्हेन यू टच एंड फील द टेक्सचर आपको रियली फील इंस्पायर्ड बाय इट. But what are some of the other things that inspire you, Aarti, in your
life? Meri emotions. I think main bahut zyada emotional hu meri family ko, matlab har emotions ko leke. To jab main kaam karne baithti hu na, to main adhiktar terracotta mein na work bhi yahi karti hu, wave of emotions, wave of feelings. Usi ke upar main pura mera journey chal rahi hai abhi bhi. To jo mere emotions hain, आजकल तो लोग ना नॉर्मल इमोशंस को मतलब दिखा भी नहीं पाते हैं किसी को. मैं इस काम के जरिए ना ये मेरा रहता है कि आप ना खुल के जिए. मतलब आप अगर खुश हैं तो वो एक आपके अंदर एक पूरी वेव आती है इमोशंस एक्साइटमेंट की, वो उछलती है, आप उसको दिखाइए. अगर आप सैड हैं तो आप तो वो बुझता है, उसको भी दिखाइए. तो ये मेरे इमोशंस ही आई थिंक जो मुझे इसमें पूरी तरह से कनेक्ट करके मुझे नए नए चीजें बनाने में हेल्प कर रहे
हैं. How important has been the journey of being an artist in your life?
Actually, ma'am, अगर आप ये बोलेंगे ना कि काम के लिए, तो सिर्फ काम नहीं है, आर्ट एक ऐसी चीज है. आई थिंक किसी और प्रोफेशन में आर्ट एक ऐसी चीज है कि अगर हम मान लीजिए अगर उसको सेल नहीं भी करते हैं या प्रोफेशनली नहीं भी जाते हैं, फिर भी वो जो आपको एक पीस देती है, जो आपको एक हैप्पीनेस देती है ना. मतलब आजकल तो आप जानते हैं कि थेरेपी के रूप में भी आर्ट का यूज होने लगा है ना. तो ऑटोमेटिकली वो चीज इतनी ज्यादा आपको अंदर से खुशी देती है. और अगर आप अपने लिए काम करते हैं, आजकल लोग वो नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग सेल करने के लिए काम ज्यादा करने लगे हैं, पर अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो वो खुशी ही जब आप सेल भी करेंगे ना, तो वो एक अलग ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी उस चीज के लिए. तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, आप हर किसी में एक आर्टिस्ट तो होना ही चाहिए. आप उसको प्रोफेशन बनाए चाहे नहीं बनाए, पर आपकी लाइफ को पीसफुल और खुशनुमा बनाने के लिए आपके अंदर आर्ट होनी ही चाहिए.
यू नो इट्स सो ट्रू व्हाट यू सेड आरती. हमारे कोई फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट हैं और वो कभी भी बोलते हैं कि वो दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं, अपने खुशी के लिए बनाते हैं.
बिल्कुल.
एक दो तो ऐसे हैं कि 20 वर्क्स बनाएंगे पर सिर्फ 2 बेचेंगे, क्योंकि वो बाकी हमारे बच्चों की तरह है. वो इतना स्पेशल है हमारे लिए कि हम उससे आई कांट पार्ट विथ इट राइट नाउ, आई नीड टू कीप इट विथ मी फॉर अ बिट. सो आई कंप्लीटली हियर यू व्हेन यू से व्हेन यू डू क्रिएट अ वर्क इट इज विथ द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटी and putting your heart and soul into it and not for the sake of selling it.
Yes, ma'am. Yes.
So, Aarti, can you take us on your journey as an artist? What are the kind of difficulties that you have faced in this journey, especially from an intellectual property perspective? Has there been any issues that you've faced? And what have they been and how have you been able to overcome it?
Okay. Ma'am, journey, to jaise aap, maine bataya ki college ke baad start ho gayi exhibitions aur sab cheeze.
Yes.
उसके बाद मैंने जो आप इशू की बात कर रही है, तो मैंने अभी हाल ही में एक इशू फेस किया है काफी बड़े लेवल का. मेरा वर्क था वो कॉपी हुआ था, मतलब काफी सीनियर आर्टिस्ट है दिल्ली के, और उन्होंने वो कॉपी करके उसको डाला था फेसबुक पे. वो मेरे फ्रेंड हैं इसीलिए वो वहां से उसको कॉपी कर पाए थे. उस टाइम पे मतलब मैं ऐसा लगा मुझे कि मेरी एकदम जमीन हिल गई है, क्योंकि जब कोई जूनियर मैम करता है ना कॉपी, तो सारे लोग खड़े होके और एकदम शुरू हो जाते हैं कि इसको फिर से निकालिए और ऐसा वैसा. लेकिन जब कोई सीनियर करता है तो सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता है उस टाइम पर. और सबका ये कहना होता है कि आपको आर्टिस्ट बनना है या आपको ये सब करना है कि फाइट लड़नी है किसी से. तो मुझे उस टाइम पे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था. सब लोग मुझे बस यही बोले जा रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, और ये अगर आप आर्टिस्ट हो तो ये सब आपके लिए नॉर्मल बातें हैं और ऐसा आपके संग होता ही रहेगा. और ये चीज मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी आगे अगर इस तरह की फीलिंग के संग में रहती हूँ. सबने मुझे बहुत मना किया, पर जैसा मैंने कहा ये काम मेरे बच्चे जैसा है. मुझे 6 मंथ लगते हैं एक स्कल्पचर बनाने में. तो अगर आपके बच्चे को कोई हर्ट करता है तो आप कितना भी कोई बोले आप चुप नहीं रह सकते. उसी तरीके से मेरे मन में भी ये आ गया कि चाहे जो भी हो मुझे अपनी तरफ से फाइट पूरी तरह से लड़नी है और अपना नाम वापस लेना है. पर ये था कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और मेरे जैसे अभी बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि आपके संग कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए. क्योंकि मेरे साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट जुड़ गए और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पहले मैंने ऑनलाइन जो आपकी मीडिया उस पर फाइट लड़ी, उसके बाद में जब मुझे लगा कि इस सब से कुछ हो नहीं रहा है, मुझे एक ठोस कदम कुछ लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए. तो मैंने पता किया कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या कर सकते हैं. लेकिन आपको ये जानकर हंसी आ जाएगी कि नॉर्मल आर्टिस्ट तो ये नहीं जानता है कि ये ऐसा भी कोई राइट है, या फिर वो लोगों को लगता है कि अगर आपका कॉपीराइट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. मतलब कई लॉयर्स भी हैं जो ये नहीं जानते कि आपका कॉपीराइट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. मुझे ये लॉयर्स की तरफ से भी आया कि नहीं नहीं अगर आपने कॉपीराइट नहीं कराया है तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो फिर ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल हुई कि मतलब आर्टिस्ट ऐसा हो रहा है कि जैसे किसान हो गया ना कि सब लोग उससे कमा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बेचारा आर्टिस्ट के पास ही कोई हक ही नहीं बचे हुए हैं कि वो कैसे उसको डील करे. फिर लकीली मुझे पता चला कि उसके कॉपीराइट हमें उसकी एक्चुअली में कॉपीराइट अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं भी है लेकिन अगर हमने उसको फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है और उसके कमेंट्स अगर वो आपके पास है प्रूफ्स, तो आप ऑटोमेटिकली वो कॉपीराइट हो जाता है और आप उसके लिए उसके ऊपर केस कर सकते हैं. तो ये चीज किसी को अभी बहुत रेयर पता है. आई थिंक मुझे लगता है कि सबको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम पूरी तरीके से कैपेबल हैं उसके लिए फाइट लड़ने के लिए, और हमें लड़ना चाहिए ही. क्योंकि आजकल ये इतना ज्यादा होने लगा है कि लोगों को लगने लगा है कि कोई कुछ नहीं करेगा तो बहुत ईजी है, और जहां तक ये सीनियर लेवल पे हो रहा है तो उन लोगों को तो लगता है कि हमारे लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता. इस चीज में जब मैंने ये केस लड़ा तो मैं सीरियसली बोलूंगी मुझे होप नहीं थी और डर भी बहुत ज्यादा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी. लेकिन बस एक गट्स थे कि करना ही है, चाहे हारें चाहे जीतें, इस फाइट को तो लड़ना ही है. एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से लड़ाई पूरी तरह से लड़ी. तो हम लोगों ने ये केस जीता और कंपनसेशन भी उनसे लिया है. तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है. मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत उसके लिए पैसा खर्च कर सकती हूँ और चीजें कर सकती हूँ. बट अगर आप ट्रुथ है, आपका आप सही हैं और आपका काम ओरिजिनल है, तो आप बेफिक्र हो कि ऐसे लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं और पूरी तरीके से उनसे फाइट कर सकते हैं. और ये चीज जितना हो सके लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए कि हाँ, आर्टिस्टों के पास भी राइट्स हैं.
थैंक यू आरती, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. But can you tell me, a lot of artists are not aware of these rights, like you're saying. So,
yes, ma'am.
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उनको उनको intellectual property awareness देने के लिए? क्या उनके colleges में courses कर सकते हैं? क्या artist symposiums में बात कर सकते हैं? How do we get the message across to young upcoming artists जिनके पास पैसा इतना नहीं है, जो अपने career को establish करना चाह रहे हैं? जिनके पास आप जैसे यू नो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या हम किसी को बोल दें तो वो हमारे करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो हाउ कैन वी सपोर्ट एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर यंग आर्टिस्ट्स?
मैम, एक्चुअली मुझे भी यही लगा कि ये इतना बड़ा इशू हुआ और मैंने पूरा मतलब 8 months फाइट लड़ी और सभी लोग जानते भी थे, पर फिर भी मतलब आप ये सोचे कि किसी सीनियर आर्टिस्ट ने उस चीज को प्रमोट नहीं किया, जैसे वो खुद ही नहीं चाहते कि किसी तक ये बातें पहुंचे. फीलिंग ऐसी थी. तो हमारा मोटिव अब मतलब ये हो गया कि जो यंगस्टर हैं उनको ये बात पता होनी ही चाहिए. तो उसके बाद जब भी मैंने एग्जीबिशंस की हैं या कुछ भी किया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लोगों तक वो बात पहुंचे. फिर भी इस चीज को उतना फैलने नहीं दिया गया, आई डोंट नो व्हाई. बट अब हमारे पास ये चांस है कि सब लोगों तक ये ऐसा राइट है. जैसे एक विमेंस को बोला जाता है ना कि आपसे दहेज नहीं मांग सकते, तो ये भी पहले नहीं पता था लोगों को ना. इसी तरीके से इस चीज को भी हम जितना हो सकता है, अगर आर्टिकल्स आए न्यूज में जो कि आपकी आर्ट मैगजीन्स होती हैं, जो स्पेशली आर्ट्स के लिए न्यूज होती है, उसमें हम इस चीज को डालें, सर्कुलेट करें. आर्ट ग्रुप्स होते हैं तो उस चीज में डालें. तो आई थिंक जब ये लोगों को पता चलेगा, तो ये आजकल जो ये कॉपी वर्क और ये जो बहुत ज्यादा हो चुका है, वो भी थोड़ा सा कम हो पाएगा. और आर्ट एक्चुअली में पहचानी जाती है यूनिकनेस की वजह से. पर आजकल कॉपी जो करते हैं वो बोलते हैं आर्ट तो ओरिजिनल होती ही नहीं है. तो ये सुन के मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कोई आर्टिस्ट ये बोल सकता है, बिकॉज आर्ट की कीमत ही सिर्फ इसलिए है कि वो ओरिजिनल होती है. तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए. अगर ये चीज सिर्फ पता भी होगी ना, तो लोग ये करने से डरने लगेंगे कि नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्शन होने लगेंगे. तो वही है कि हमें सेमिनार्स करने चाहिए और न्यूज़पेपर्स और आर्ट की जो फील्ड के हैं एक्चुअली उनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को बोलना चाहिए कि आपको ये प्रमोट करना चाहिए.
व्हाट आर द पर्टिकुलर चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन द फील्ड एज अ वुमन आर्टिस्ट? आप वुमन आर्टिस्ट रह के क्या चैलेंजेस थे?
एक तो मैम, सबसे पहले जब मैंने शादी के बाद वापस से कमबैक किया, तो सबको ऐसा लगने लगता है कि भले ही आपने एक्सपीरियंस कितने इयर्स का किया हो ना, लेकिन जब एक गैप लेके वापस आते हैं तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है. लोग उसका बहुत अच्छे से मतलब कि फायदा ही उठाते हैं, एक तरीके से आपको और नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं कि अब तो आप शौकिया तौर पर काम कर पाएंगे, अब तो आप फैमिली ही देख पाएंगे, कहाँ आप ये काम वाम कर पाएंगे. तो ठीक है, एक तो एग्जीबिशन करिए और आपका शौक पूरा कर लीजिए. तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. एक विमेन को खास तौर पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली और अपने काम को बैलेंस करना होता है. और जब आप अपने काम में अच्छा करने लग जाते हैं ना, तो मैंने ये कमेंट भी सुने, अरे आप तो लड़की है ना, इसलिए आपको जल्दी से लोग लाइक कर देते हैं. तो ये कमेंट्स तो इतना मतलब आपको हर्ट करने वाले होते हैं, जैसे कि आपकी मेहनत पर एकदम से किसी ने पानी फेर दिया हो. तो एज अ वुमेन लोगों का जैसे आगे, अगर ये जो कॉपी भी मेरे संग में हुआ, तो उनको भी यही था कि अरे एक लड़की है, ये क्या ही कर ले. इसलिए ये चीज भी मेरे साथ में उन्होंने इजीली की कि अरे ये क्या ही लड़ेगी या कुछ भी करेगी. तो बहुत इजीली उन्होंने वो कॉपी करके कर लिया कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो एज अ वुमेन आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है किसी भी मैन से, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो हमेशा ही रहता है लाइफ में.
So, what are the tips that you would give young upcoming artists, Aarti, who are just beginning this journey? Aapka, you know, itne saal ka experience se, how will they have the strength to face the difficulties like you have?
मैम बस मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना काम पूरी शिद्दत से कीजिए और डटे रहिए उस चीज को करने के लिए। लोग चाहे जो भी कहें, आपको उसकी वजह से ना ही टूटना है ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है। आप अपनी फैमिली संभाल के ये काम करते हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन ऑलरेडी है। और यंग आर्टिस्टों को इस बारे में पता होना चाहिए। मैम आजकल सबसे ज्यादा ये जो चल रहा है कि आर्टिस्ट के पास ना राइट्स है ही नहीं, जो आपके नेशनल कॉम्पिटिशन भी होते हैं। मैं यंगस्टर को मतलब मैंने कुछ की भी है पहले भी बातें, पर कोई भी किसी तरह का स्टेप लेना नहीं चाहता। उनमें आपके जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी ये लिखा होता है कि अगर ये पीस टूटता है या कुछ होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये अच्छी बात है बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन करते हैं और उसमें आप किसी स्कल्पचर को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेफ रहे वहां पर। रस्ते में टूटता है तो बात अलग होती है। तो यंगस्टर को इस चीज के लिए अब कदम उठाने ही चाहिए, क्योंकि आप इकट्ठा हो गए। यंगस्टर का सबसे बड़ा पावर है कि उनमें बहुत बहुत सारे हैं स्ट्रेंथ है उन लोगों की, कि उन लोगों को इकट्ठे होकर इन चीजों के खिलाफ बोलना चाहिए कि आप ये रोज बदलिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो सब बिगड़ रहे हैं। और हम आप जो सीनियर और जो जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं आप वो डालना ही नहीं चाहता किसी भी कॉम्पिटिशन में, क्योंकि इतना ज्यादा ये पॉलिटिक्स और ये रूल्स जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करते कि हम डालें। तो बस मेरा यही कहना है कि आप काम करिए और आपके साथ में जो वुमेन आर्टिस्ट आपको मिलते हैं और या यंगर आर्टिस्ट जो बोलते हैं उनको आप अवेयर करिए चीजों से, उनको सपोर्ट कीजिए और साथ में मतलब चलते जाइए और रास्ते आपको मिलते जाएंगे।
लवली, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच आरती फॉर दिस इंस्पायरिंग पॉडकास्ट विद अस। वी रियली रियली अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन एंड योर willingness to be a part of this journey and sharing it with us. We wish you all the very best and thank you once again for coming on this podcast.
Thank you so much ma'am, this is really a very great thing for me. So main bhi bahut khush hui ye padhkar aur main chahti hu ki ye jo jaise zyada logo tak pahunche aur awareness badha sake hum intellectual property ke liye aur sabhi artists ko support mile. Thank you so much ma'am.
Thank you.
Bye.
Thank you for joining us on the Art and Law podcast. Our journey through the series, Spotlighting Exceptional Women, continues, and we invite you to stay connected for more inspiring stories. Visit our website at www.artandlaw.com for our full podcast library and to catch up on episodes you may have missed. We are excited to bring you more engaging discussions with women who are making a mark in their fields. See you in the next episode.